नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 11 से अध्ययन करेंगे, जिसके 37 पद तक का हमने अध्ययन कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन को करें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने उन तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए जो भिन्न भिन्न जगह पर बैठकर आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं और अपने जीवन में आपकी आशीषों को ग्रहण करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आज भी आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि वे जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों में कार्य करने पाए। हम विनती करते हैं कि दानियल की पुस्तक के द्वारा आप हरेक श्रोता भाई बहनों से बातचीत कीजिए। आज हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, किसी न किसी रूप में अपने आप को हानि पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, हर एक प्रकार की उनकी बुराइयों से उन्हें छुटकारा दे, बीमारियों से छुटकारा दे, उन्हें शांति और आनंद दे, ताकि हर एक जीवन इस बात को जानने पाए कि दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। आज आप हम सबके जीवन में अद्भुत कार्य करें, अपनी महिमा लें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि ख्रिस्त विरोधी एक स्वेच्छाधारी तानाशाह होगा जो किसी भी देवी देवता को नहीं मानेगा, अर्थात किसी को वह ईश्वर करके नहीं मानेगा। वह अपने आप को देवताओं से और मनुष्यों में से भी सबसे बड़ा कहलाना पसंद करेगा। वह अपनी इच्छा का स्वामी होगा, शैतान उसके द्वारा अपनी इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय सीमित है। वह पूरा का पूरा शैतान का राज्य होगा। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की भी चिंता नहीं करेगा। इस पद से तो ऐसा लगता है कि ख्रिस्त विरोधी एक इसराइली ही होगा। यह आवश्यक नहीं कि वह यहूदी हो, वह मसीही जन भी हो सकता है, वह अन्य जातीय मनुष्य भी हो सकता है। वह जो भी हो, जहां का भी हो, वह अपने पुरखाओं के परमेश्वर को नहीं मानेगा। मेरे मित्रों, यह तो थी दूरस्थ भविष्य की बात, परंतु निकट भविष्य में, जैसा कि इतिहास गवाह है, सिकंदर महान का साम्राज्य तीन भागों में बट गया था और सीरिया प्रदेश का राज्य सेल्यूकस नामक उसके एक सेनापति के पास था। इसी सेल्यूकस का वंशज एंटियोकस एपिफनस था, जिसे दानियल ने स्वप्न में छोटा सिंह देखा था। यह मनुष्य ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक है और भावी पाप के पुरुष का चरित्र चित्रण है। वह 195 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा था। वह घृणा का पात्र इसलिए था कि वह परमेश्वर का निंदा करने वाला था। एंतियोकस भी शांति की योजना लेकर सिंहासन पर बैठा था। वह एक विश्वासघाती राजा था। उसने वाचा के प्रधान महायाजक ओनियास तृतीय को छल से मरवा दिया था। मिस्र पर आक्रमण करके वहां से बहुत लूट सीरिया ले आया था। अतः उसने मिस्र पर फिर आक्रमण करवाना चाहा तो वहां समुद्र में रोम की नौसेना ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। उसने इसराइल के साथ वाचा बांधी थी, परंतु अंत में उसने वाचा नहीं निभाई और 170 ईस्वी पूर्व में उसने 100,000 से अधिक इसराइलियों को मौत के घाट उतारकर मंदिर में अन्न बलि बंद करवा दी तथा वेदी पर सुअर का खून चढ़ाकर उसने उसे अपवित्र किया। इस समय कुछ देशद्रोही इसराइली भी उसके साथ में हो गए थे। मेरे प्रियो, उसने पवित्र स्थान में बृहस्पति की मूर्ति को स्थापित कर दी, जिसे दानियल ने उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहा है। परंतु ध्यान रखें कि इसके बाद प्रभु यीशु ने फिर से उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा की थी, जो भविष्य में आने वाले ख्रिस्त विरोधी की अपनी मूर्ति होगी। इस बीच परमेश्वर ने मकाबियों को उठाया, जिसे हमने देखा पिछले अध्ययन में। 166 ईस्वी पूर्व में मत्तित्याह ने उसका विरोध किया और मंदिर का शोधन किया। निसंदेह एंतियोकस एक घृणित मनुष्य था, परंतु वह उस भावी राजा से अधिक घृणित नहीं था, जिसका उल्लेख पद 36-39 में किया गया है। भविष्य में आने वाला यह दुष्ट यूनानी राज्य की सीमा से उभरेगा। वह बहुत घमंडी होगा और अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा कहेगा। वह स्वयं को ईश्वर कहेगा। सांसारिक मनुष्य इस झूठे मनुष्य ख्रिस्त विरोधी की ओर हो जाएंगे, क्योंकि यह हठीला राज्य कुछ समय तक फूलेगा और फलेगा, जो दानियल द्वारा कहा गया 70वां सप्ताह होगा। यह मनुष्य सब धर्मों का विरोधी होगा। वह अपनी स्तुति और प्रशंसा करवाएगा। यह समय महाक्लेश का समय होगा। वह उन सबको मरवा देगा जो उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। वह सबके लिए एक छाप बनाएगा, जिसके बिना कोई भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर पाएगा। वह एक तानाशाह होगा। मेरे प्रियो, आपको याद होगा कि शैतान ने प्रभु यीशु से कहा था कि यह संसार उसका राज्य है, और यदि प्रभु यीशु उसे दंडवत करे तो वह उसे संसार का राज्य दे देगा। प्रभु यीशु ने उसकी बात का इनकार नहीं किया, परंतु उसे दंडवत भी नहीं किया था। यह ख्रिस्त विरोधी शैतान को दंडवत करके संपूर्ण विश्व का राज्य अपने हाथ में ले लेगा और शैतान के रूप में अपनी उपासना करवाएगा। इस समय शैतान पूरा लाभ उठाएगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय सीमित है। इस कारण वह स्वेच्छाधारी तानाशाह होगा और घमंड से ऐसा भरा होगा कि अपने पितरों के परमेश्वर को भी वह नहीं मानेगा। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यह परमेश्वर का वचन हमें किन बातों की ओर ले चलता है। दानियल नबी की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 38 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। डॉक्टर न्यूवेल का कहना है, हम अन्य जाति अन्य विश्वास में देखते हैं कि साइबेल और डायना के मुकुट कई परतों के हैं, जो दृढ़गढ़ का विचार प्रकट करते हैं। उनमें कंगूरे और बंदूक चलाने के छिद्र आदि हैं। ख्रिस्त विरोधी गढ़ों के ईश्वरों को सम्मान देगा, जिसके हाथ में संसार के सब राज्य होंगे। वह कौन सा ईश्वर है? शैतान ने प्रभु यीशु को संसार का राज्य देने का प्रस्ताव रखा था, परंतु प्रभु यीशु ने उसे स्वीकार नहीं किया था। शैतान के पास वह अधिकार है। जी हाँ, ख्रिस्त विरोधी उस प्रस्ताव को स्वीकार करके विश्व शासक बन जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि ख्रिस्त विरोधी अपनी उपासना करवाएगा और उस युग में शैतान की उपासना विश्वव्यापी होगी। संसार के सब राज्य उसके अधीन होंगे, अर्थात वह पहला विश्व तानाशाह होगा। हम आगे देखेंगे दानियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 39 पद में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उस पराय देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। वह समय शैतान का होगा और वह उसका पूरा पूरा लाभ उठाएगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय सीमित है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 12 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। मेरे मित्रों, उस समय ख्रिस्त विरोधी शैतान की इच्छा पूरी करने का साधन होगा। वह मनुष्यों पर राज्य करके जैसा चाहेगा वैसा संपत्ता प्रबंध करेगा। वह स्वेच्छाधारी तानाशाह होगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि स्वेच्छाधारी राजा की विजय क्षणिक होगी, अर्थात कुछ समय के लिए होगी। आगे लिखा है दानियल 11 अध्याय के 40 पद में, अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर ववंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। मेरे मित्रों, यह अंत के समय है, न कि समय के अंत। यह वह समय है जो दानियल के मन में पहले से था। इसराइल राष्ट्र के अंतिम दिन, जिन्हें प्रभु यीशु ने महाक्लेश कहा था। लिखा है दक्षिण देश का राजा, अर्थात मिस्र का शासक। हमारे लिए उसे पहचानना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मिस्र में वर्षों से कोई स्वदेशी राजा नहीं रहा था। परमेश्वर ने उस देश पर पतित राजा रखकर बहुत ही उत्तम काम किया था, परंतु अंत के समय उदय होने वाला राजा शायद संपूर्ण अफ्रीका को संगठित करेगा, जैसा आज तक किसी राज्य ने नहीं किया है, और वह ख्रिस्त विरोधी के विरुद्ध उठेगा। तब हम पढ़ते हैं उत्तर देश का राजा, वह सेल्यूकस राजवंश का स्थान लेगा। मेरे विचार में वह यहेजकेल नबी की पुस्तक 38 और 39 अध्याय में व्यक्त उत्तर से आने वाला राजा होगा। यह रूस है और हर्मगिदोन का युद्ध छेड़ेगा, जो मध्य युद्ध होगा। उत्तर का राजा आरंभ में ही नष्ट किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे दंड देगा। हम दानियल 11 उसके 41 पद में पढ़ते हैं, वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मुआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। लिखा है कि उसके हाथ से बच जाएंगे। पलिस्तीन में रूस का प्रवेश महाक्लेश, संकट और संघर्ष को गहरा बनाएगा। जब ख्रिस्त विरोधी शिरोमणि देश में प्रवेश करेगा, तब वह एदोम, मुआब और अम्मोन द्वारा परेशान होगा। उस स्थान पर इश्माएल के वंशज अरब रहते हैं। वहां ख्रिस्त विरोधी कुछ समय समस्या का सामना करेगा। तब हम आगे पढ़ते हैं दानियल 11 के 42 पद में लिखा हुआ है, वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। मेरे प्रियो, मिस्र और दक्षिण का राजा ख्रिस्त विरोधी के सामने समर्पण कर देगा। दानियल 11 अध्याय के 43 पद में लिखा है, वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। वह संसार के खजाने को नियंत्रण में रखेगा। उस समय संसार का संपूर्ण पैसा बाजार उसके नियंत्रण में होगा। लीबिया और इथोपिया उसे समर्पण कर देंगे और इस प्रकार संपूर्ण अफ्रीका उसके अधीन हो जाएगा। आगे लिखा है दानियल 11 अध्याय के 44 पद में, उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। लिखा है पूरब से समाचार। पूर्व के लाखों सैनिक हर्मगिदोन के युद्ध में आएंगे और यह विश्व शासक परेशान हो जाएगा। उस समय संसार की और परमेश्वर की प्रजा की दशा निराशाजनक होगी। एकमात्र आशा केवल परमेश्वर में ही होगी। मेरे मित्रों, हम आगे देखेंगे दानियल 11 उसके 45 जो इस अध्याय का अंतिम पद है। लिखा है, वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। लिखा है दोनों समुद्रों के बीच अर्थात भूमध्य सागर, पवित्र शिरोमणि पर्वत जो यरूशलेम है। उस समय ख्रिस्त विरोधी अपना मुख्यालय भूमध्य सागर और यरूशलेम के मध्य में रखेगा। वहां वह राज करने नहीं पाएगा क्योंकि प्रभु यीशु आकर उसे नष्ट कर देगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 17 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दुष्टता का राज होगा और केवल मसीह यीशु के आने पर ही कोई इस पृथ्वी पर बचाया जाएगा, क्योंकि लिखा है कि वह पशु संसार पर राज्य करेगा और प्रत्येक मनुष्य को अपने अधीनता में रखेगा और अद्भुत कार्य भी करेगा। वह मूर्ति पर जान फूंक देगा, मूर्ति बोलने लगेगी और ऐसे अद्भुत कार्यों को देख करके लोग आश्चर्यचकित होंगे और वे सोचेंगे कि यही परमेश्वर है, यही ईश्वर है, और यहां तक कि कुछ लोग उसे मसीह सोच बैठेंगे। मेरे मित्रों, यह क्या ही भयानक समय होगा। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप भी उनमें से होंगे जो उसके पीछे होंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि लोग उसे नहीं समझ पाएंगे और अंततः उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ेगा और एक समय ऐसा होगा कि वह दुष्ट अर्थात ख्रिस्त विरोधी पकड़ा जाएगा और उसे आग में डाल दिया जाएगा और यह कार्य किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है और न ही किसी राजा के द्वारा। यह काम प्रभु यीशु करेगा क्योंकि वही मनुष्यों को बचा सकता है। मेरे मित्रों, यदि आज आप बचना चाहते हैं, इस संसार में तमाम बुराइयां हैं जो शैतान के अधीन हैं, वे लोग आज भी उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं, परंतु यदि आज भी आप उससे बचना चाहते हैं तो आपके लिए मार्ग है। परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर दिया है। जी हाँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में आए, इसलिए आए कि वह हमारे पापों को अपने ऊपर में ले ले। उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर में ले ली और वह हमारे लिए मरा, हमारे बदले में मारा गया, ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि हम शांति पाएं, ताकि उस भयानक दुष्ट से हम बचाए जाएं। जी हाँ, जो उसके निकटता में है, उसकी शरण में है, वे तो बचाए जाएंगे, परंतु वे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, इससे ख्रिस्त विरोधी के बारे में नहीं जानते हैं, वे उसके चंगुल में फंस जाएंगे और अंततः वे भी नरक के भागी होंगे। मेरे प्रियो, यह क्या ही भयानक समय होगा। तो आइए हम अपने मित्रों को और अपने परिवारों को और अपने कलीसिया के लोगों को इन वचनों के द्वारा सचेत करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह दानियल की पुस्तक एक भविष्यवाणी की पुस्तक है और इसमें से कुछ बातें पूरी हो गई हैं और कुछ अभी होने पर है। ख्रिस्त विरोधी अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है। मेरे मित्र, यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं यह विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही इस बात को जान लिया है कि ख्रिस्त विरोधी किस रीति से अपने काम को करेगा और किस प्रकार वह तानाशाह बनकर लोगों को परेशान करेगा। तो इससे पहले कि वह हमारे बीच में ऐसा करे, भली बात तो यही है कि हम प्रभु के पास आ जाएं। तो आइए हम सब मिलकर के उस महान परमेश्वर की शरण में आएं। मेरे मित्रों, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि यह वचन हम में से हर एक के जीवन में अधिकाई से काम करने पाए। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके द्वारा से आपने हम सब से बातचीत किया है। पिताजी, हमारी प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके वचन को दानियल नबी की पुस्तक से सुना है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके विश्वास को बढ़ाएं, इतना ही नहीं उस विरोधी से भी आप इन्हें बचाएं, ताकि ये हर एक अपने जीवन में आपको जगह देने पाएं। पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को, व्यक्तिगत जीवन को आप आशीषित करें, वचन के गहराई में और अधिकाई से ले चलें, ताकि प्रत्येक जीवन आप में बढ़ने पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आज के अध्ययन को आशीषित किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ समाप्त होता है, परंतु अगले अध्ययन में आप अवश्य आएं, जो कि हमारे इस पुस्तक का अंतिम अध्ययन होगा, ताकि हम इन पुस्तक के महत्वपूर्ण बातों को फिर से देख और सुन सकें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। इसके अलावा हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।